प्रिय और भौतिकवादी प्रजा भी अध्यात्म का आश्रय पाने के लिए भागी चली आ रही है। भारतवर्ष को तो उसका सुनिश्चित लाभ मिलने वाला है, भले ही उसका प्रत्यक्ष दर्शन 1999 के बाद दिखाई दे। अपने दैनिक जीवन में सूर्य की शांत स्थिति प्रातः और संध्या के समय होती है। भारतीय आचार्यों ने यह दोनों ही समय जप के लिए उपयुक्त बताए हैं। इसी प्रकार नवरात्रि पर विशेष साधनाएं करने का जो विधान है, वह सूर्य की इस भौतिक प्रकृति की खोज का ही फल है, वह पूर्णतया विज्ञान सम्मत ही है। सविता और संसार व्यापी परिवर्तन प्रक्रिया। दीर्घकालीन कालचक्र के अनुसार इस बीच दो महाक्रांतियां होने को हैं। अगले कुछ दिन बहुत अधिक तीव्र और शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन होंगे। यूं सूर्य कलंकों सनस्पॉट्स के कारण पृथ्वी में प्राकृतिक परिवर्तनों का क्रम 11 वर्ष बाद आता है, पर किन्हीं अज्ञात कारणों से अगले दिनों इन नियमों को तोड़कर सूर्य पृथ्वी में परिवर्तन लाएगा। इसमें वृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, ओलावृष्टि आदि ही नहीं, युद्ध और महामारियों के प्रकोप भी होंगे। उन प्रकोपों में उन्हीं की रक्षा होगी जो सूर्य से अपना संबंध जोड़े रहेंगे। इस तरह की घोषणाएं हम काफी समय पहले से ही कर रहे हैं, वह गणित, ज्योतिष और सूर्य विद्या के आधार पर ही करते रहे हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष उसकी पुष्टि ही करते हैं। भारतवर्ष को मुस्लिम और अंग्रेजी सभ्यता के बंधन में रहते हुए कोई 1500 वर्ष बीत रहे हैं। सूर्य विद्या के आधार पर इन 1500 वर्षों का अंत इसी शताब्दी में हो जाएगा। ग्रह गणित के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 9,30,00,000 मील की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पृथ्वी लगभग 67,000 मील प्रति घंटा की गति से चलकर 365.25 दिनों में पूरा करती है। प्रत्येक चक्कर में 1/4 दिन बढ़ जाता है। 4 वर्ष में वह 1 दिन के बराबर होता है। अंग्रेजी हिसाब से प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की और वर्ष 366 दिन का होता है। एक नया पूरा वर्ष होकर पृथ्वी को पुनः उसी कक्षा में आने के लिए 365.25/1461 वर्ष लग जाते हैं। इस तरह 1461 वर्षों का एक क्रम इस शताब्दी के अंत में पूरा हो जाएगा। इस बीच सूर्य की प्रचंड शक्तियों का पृथ्वी पर आविर्भाव होगा और उससे वह तमाम शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी जो मानसिक दृष्टि से अध्यात्मवादी न होंगी। जो लोग सूर्य शक्तियों से संबंध बनाए रखेंगे, उनकी रक्षा और समुन्नति उसी प्रकार होगी जिस तरह भयंकर ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र में पड़े फूलों का अनिष्ट नहीं होता, जबकि बड़े बड़े जहाज यदि साधे न जाए तो उस अनंत जलराशि में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। गायत्री उपासक इन परिवर्तनों को कौतूहलपूर्वक देखेंगे और उन कठिनाइयों में भी स्थिर बुद्धि बने रहने का साहस उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार माँ का प्यारा बच्चा माता के क्रुद्ध होने पर भी उनसे भयभीत नहीं होता, वरन अपनी प्रार्थना से उन्हें शांत कर लेता है। यह नहीं समझना चाहिए कि इन परिवर्तनों में विश्व संस्कृति का अंत हो जाएगा। जब तक सूर्य है तब तक सृष्टि बनी रहेगी। चेतन स्वरूप में प्राणी जगत सूर्य या सूर्य का हो अंश है और सूर्य कम से कम 1 अरब वर्ष इसी तरह प्रकाश और प्राण देता रहेगा। जब तक सूर्य है, जब तक सूर्य के पास हाइड्रोजन है, तब तक सृष्टि बनी रहेगी, पर अब वह एक बार स्नान कर अपनी संपूर्ण गंदगी साफ कर देने का इच्छुक है। वर्तमान प्राकृतिक हलचलें युक्त परिवर्तन की संभावनाएं उसी का प्रमाण है। अंतरिक्ष किरणों, उत्तरी ज्योति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और अयन मंडल आयनोस्फीयर पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सूर्य अपने आप उत्तेजित होता रहता है, उसका रहस्य क्या है। इसका उत्तर तो वे नहीं दे पाए, पर उनका विश्वास है कि 11 वर्षों में एक वर्ष ऐसा आता है जबकि उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। उत्तेजित सूर्य अपने संपूर्ण सौर मंडल का, जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित है, मंथन करता है। उस समय उससे ज्वालाएं फूटती हैं और सूक्ष्म कणों की वर्षा होती है। यह कण बाद में कहां विलीन हो जाते हैं, इसका पता वैज्ञानिक लगाने में असमर्थ रहे, पर आत्मा विद्या के आचार्य यह जानते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक अणु में अतिरिक्त शक्ति के रूप में यह उत्तेजित कण ही हलचल पैदा करते हैं। उससे स्थूल प्रकृति ही प्रभावित नहीं होती, वरन मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति अर्थात विचार, भावनाएं, संकल्प और विश्वास भी परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन को आंका जाना यद्यपि संभव नहीं होता, पर सामूहिक रूप से विश्व की राजनीति, उद्योग, व्यापार, श्रम, रोजगार, युद्ध एवं सामाजिक गतिविधियों पर उसके प्रभाव को देखकर वस्तुस्थिति को समझा अवश्य जा सकता है। उसी से इस विश्वास की पुष्टि होती है कि सूर्य जड़ पदार्थों का पुंजी नहीं, प्राण और मनों में जगत का स्वामी है। जो लोग इन बातों की अनुभूति करेंगे, वे तेजी से गायत्री विद्या के अंतराल में प्रविष्ट होंगे। साधना, ज्ञानार्जन और संयम में उनकी वृत्ति बढ़ेगी, ऐसे लोग ही आगे चलकर विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। सूर्य द्वारा ही स्थूल प्रभाव को तो वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, गर्मी सूर्य से ही मिलती है, वर्षा सूर्य कराता है, भूमि और पानी को अलग अलग तरह की गर्मी भी वही देता है। फलों में, वनस्पतियों में खनिज सूर्य से ही आते हैं, वही बाद में मनुष्य पाता है। लकड़ी, पत्थर का कोयला, जलप्रपात और पेट्रोल आदि सभी तत्व सूर्य ही देता है। यह सब वह अपनी बाहरी क्रिया शक्ति और गर्मी से करता है। उसके तल का तापमान 11,000 फारेनहाइट है। पृथ्वी की किसी वस्तु को इतनी गर्मी में सेकंड तक ही रखा जा सकता है। सूर्य के यह प्रभाव तो दृश्य हैं और इतने सामान्य हो गए हैं कि लोग अपने महत्व को भी नहीं समझते। सूर्य अपने भीतर एक और विलक्षण 29 मिलियन अंश फारेनहाइट की गर्मी रखता है। पृथ्वी की गर्मी तो उसके आगे बर्फ की तरह ठंडी है। उस शक्ति से ही सूर्य बिंब पर सटी हुई कणिकाओं ग्रेनल्स में हलचल करता है। यह ग्रेनल्स 600 से 1400 किलोमीटर तक के गोले और समकोण आकार के होते हैं। इन ग्रेनल्स को वह बारी बारी से चमकाता बुझाता रहता है, उसी से उसके बिंब में झिलमिलाहट जैसी होती है। देखने में वे तरंगे आकाश में ही शांत हो जाती हैं, ऐसा जान पड़ता है, किंतु उनसे पृथ्वी में विचित्र प्रकार की हलचलें होती हैं। यह लहर तंतुक फिलामेंट सांप की तरह लहराते हुए चलते हैं और गगन मंडल में विचित्र परिवर्तन करते हैं। उसके फलस्वरूप पृथ्वी पर प्राकृतिक हलचलें पैदा हो जाती हैं। इन हलचलों में यद्यपि कोई निश्चित समय क्रम नहीं है, पर अधिकांश 11 वर्षों में एक बार तीव्र हलचल होती है। ऐसे समय साधनाओं की सिद्धि के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। मानसिक जप से उन शक्ति कणों और स्पंदनों को अपने भीतर स्थिर कर अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ तीव्रता से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इन दिनों गायत्री उपासना के प्रसार का एक व्यापक अभियान चलाकर उससे आधिदैविक लाभ प्राप्त करने का अवसर सारे देश को देना आवश्यक है। इस पुण्य में सभी गायत्री उपासकों को भाग लेना चाहिए। सन 1966 सूर्य के 11 वर्षीय पट परिवर्तन का 19वां चक्र था। उस वर्ष मई और जून के महीनों में रूस, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, भारत, इटली, अमेरिका, अफगानिस्तान आदि में भीषण बाढ़ आई। बुल्गारिया में 16 जून को ऐतिहासिक स्मरण वाले ओले गिरे। कुबान में 18 मई को भयंकर तूफान आया, जिसमें लाखों पेड़ उखड़ गए, फसलें बर्बाद हुईं और मकानों की छतें तक उड़ गईं। इसी अवधि में भारतवर्ष में भीषण बाढ़ आए और हजारों लोग बेघर बार हो गए। हम ऊपर बता चुके हैं, अगले 20 वर्ष व्यापक हलचलों के हैं, पर उनमें से सन 1988 और 1999 यह दो वर्ष भारी प्राकृतिक उथल-पुथल के होंगे। इन वर्षों में पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बदल जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। यह दृश्य परिवर्तन सूर्य के द्वारा होता है, पर क्यों? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। गायत्री महाविद्या के अनुसार विश्व रचना के दो ही तत्व प्रधान हैं, एक काया या प्राण, दूसरा भूत या पदार्थ। भूत प्राण के बिना गतिशील नहीं होता, इसलिए प्रत्येक भौतिक गायत्री का जीवन तत्व उसका प्राण है। पंचभूतों से बना मनुष्य शरीर नितांत प्राकृत है। यह गायत्री का शब्द भाग है और जिस तरह से उच्चारण करने के बाद गायत्री के अक्षर वायु में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी उत्पन्न होकर विलीन होते रहते हैं। उसका दूसरा चरण प्राण है। यह प्राण सविता का ही अधिष्ठान है। उसका दृश्य भाग तो भौतिक है, पर अदृश्य भाग मनोमय है, अर्थात उसमें चेष्टाएं हैं। अपने इसी रूप में सूर्य सर्वाधिक शक्तिशाली है, उसी बात को श्रुतियां कहती हैं, प्राण प्रजाना उदयते सूर्य। यह सूर्य ही अपने प्राणों के संयोग से प्रजा की उत्पत्ति करता है। ब्रह्म सूर्य सम ज्योति, यजुर्वेद 23:24। सूर्य का भौतिक प्रतीक स्थूल है, पर उसमें चेतन ब्रह्म शक्ति भरी हुई है। सूर्य को ऋषियों ने त्रिली विद्या कहा है, अर्थात उसमें स्थूल तत्व जिनसे शरीर बनते हैं, प्राण जिनसे चेतना आती है और मन जो चेष्टाएं प्रदान करता है, तीनों तत्व विद्यमान हैं। हम दृश्य रूप से सूर्य के परिवर्तनों से प्रभावित होकर दुखी होते हैं, किंतु गायत्री मंत्र के माध्यम से जब सूर्य के साथ हम अपने मनोमय जगत को जोड़ते हैं, तादात्म्य करते हैं, तो हमें उसके आध्यात्मिक लाभ तीनों स्वास्थ्य, तेजस्विता और मनस्विता के रूप में मिलते हैं। जिस दिन पृथ्वी के लोग इस विद्या को ठीक ठीक जान लेंगे, उस दिन सुख शांति और समृद्धि का कोई अभाव नहीं रहेगा। पर युग परिवर्तन की इस संधि और संक्रांति अवस्था में उन लोगों को अधिक श्रेय सम्मान मिलेगा जो इस तत्वज्ञान के अवगाहन को सारे विश्व में फैलाने का प्रयत्न करेंगे। सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास। दृश्य प्रकृति का सृजेता सूर्य माना गया है, उसी प्रकार शरीर रूपी जगत का सृजेता भी सूर्य है जो नाभि में बैठा हुआ है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग महत्वहीन नाभि को भारतीय योगशास्त्र में भारी महत्व दिया गया है। बच्चा गर्भावस्था में नाभि के द्वारा ही माँ के शरीर से जुड़ा हुआ होता और उसके शरीर विकास के लिए उसे नाभि द्वारा ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नाभि का विस्तार सारे शरीर में है। अंतर्दृष्टि जागृत करने वाली प्रत्येक साधना का प्रारंभ इसी को जागृत करने से होता है। कुंडलिनी के साधक को भी प्राणायाम की यथेष्ट मात्रा एकत्र कर लेने के बाद सर्वप्रथम लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का ही अभ्यास करना पड़ता है। पातंजलि कृत योग दर्शन में बताया गया है कि नाभिचक्र काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में चित वृत्तियों को स्थिर करने से नाड़ी आदि शरीरस्थ स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है। पाश्चात्य देशों में अब लोग इसे सोलर प्लेक्सस के नाम से जानने भी लगे हैं, किंतु उनका ज्ञान अभी नहीं के बराबर है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, सया इव में धृथरंतर्मग्नो प्रोते वेद ब्रह्म वर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योगजीवति महान प्रज्ञया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या न प्रत्यंगनी माचामेन निष्ठि वेतद व्रतम। जो इस रथंतर नाभि स्थित साम की अग्नि में उपासना करता है वह तेजस्वी प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रजा और पशु से संपन्न प्रतिष्ठा वाला होता है, वह कीर्ति से भी महान होता है, अग्नि की ओर मुख करके न कुछ खाए और न थूके, यह व्रत है। योग वशिष्ठ ने तो इसी अग्नि को, सूर्य को, जो नाभि में स्थित है, कुंडलिनी शक्ति का द्वार माना है और लिखा है, मानसम कुयंत्र जठरे स्थिते श्लिष्ट मुख मिथ ऊर्ध्वाध समिलत स्थूल हृदयम्भ स्थैर्य वैत्सम तस्य कुंडलिनी लक्ष्मीर निलीनांत निजास्पदे पद्यराग समृद्धस्य कोशे मुक्तावली यथा 6/181-63-64। हे राम, देह रूपी यंत्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिले हुए मुख वाली धोकनियों के समान मांस का पिंड इस तरह थरथराता हुआ, सूर्य भी कंपनशील प्लाज्मा या अग्नि ही है, स्थित है जैसे ऊपर और नीचे बहने वाले दो जलों के बीच में सदा स्थिर रहने वाला बेलकुंज। उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति इसी प्रकार स्थित है जैसे मूंगे की पिटारी में मोतियों की माला। योग विद्या के यह कथ्य जितने तथ्यपूर्ण है उतने ही आश्चर्यजनक। पदार्थ को शक्ति में बदलने वाले इस शक्ति केंद्र की भारतीय योगियों ने तब शोध की थी जब पश्चिम शक्ति की परिभाषा करना भी नहीं जानता था। यूं यह शक्ति सामान्य अवस्था में शिथिल और उपेक्षित पड़ी रहती है। अमर्यादित आहार विहार के कारण उसका भय भी होता रहता है, तथापि उस क्षय को रोककर आश्चर्यजनक काम किए जा सकते हैं। किन्हीं व्यक्तियों में यह प्रमाण स्वयं व्यक्त होता है। साधारण तौर पर मनुष्य का पेट फल फूल अन्न और रस पचाने की जितनी अग्निवाला माना जाता है, यदि लोहा शीशा पचाने की बात आए तो भारी शक्ति वाली अणु भट्टी की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति बिना किसी बाह्य रसायन अथवा यंत्र की मदद से यदि इस्पात और पत्थर जैसा कठोर तथा साइनॉइड जैसा मारक विष खाकर पचा जाए तो यही प्रमाणित होगा कि उसके पेट में वस्तुतः कोई अग्निकुंड होगा। पिछले दिनों ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण सामने आए हैं जो आश्चर्य ही कहे जा सकते हैं। उनका विवरण विस्तार से देने की यहाँ न गुंजाइश है और न आवश्यकता। कहा इतना भर जा रहा है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री साधना से दृश्य जगत के सूर्य का संबंध शरीर जगत के सूर्य से स्थापित कर उन सभी संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। गायत्री को पंचमुखी भी कहा जाता है। जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है, सभी प्रतीकों को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है और उनके पीछे विशिष्ट प्रेरणाएं विद्यमान रहती हैं। पंचमुखी गायत्री के पांच मुख पांच मस्तक मानवी सत्ता के कलेवर में विद्यमान पांच कोश हैं। इन पांचों कोशों में से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहना चाहिए जिनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। अधिकांश व्यक्ति प्रथम स्तर तक अन्नमय कोश की स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। बहुजनों की मति इतनी ही होती है, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष चार कोशों को भी सक्रिय समर्थ और सुविकसित बना लेते हैं उनकी सामर्थ्य क्षमता देवोपम होती चली जाती है। इन कोशों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव होता है। पंचमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से पांच कोशों के जागरण की संभावना व्यक्त करना ही है। सावित्री को श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा गया है, अर्थात शुभ प्रकाश उसका स्वरूप है। इसी आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है, उसका ध्यान करने में प्रकाश के मध्य में उपस्थित आकृति की ही भावना करनी पड़ती है। सविता की अधिष्ठात्री होने के कारण वह स्वयं भी प्रकाश पुंज है। प्रकाश युक्त ही उसका ध्यान करना पड़ता है। साधक को वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती और उसे विशिष्ट ब्रह्म वर्चस्व प्रचंड ओज एवं प्रखर तेजस्विता प्रदान करती है, इसलिए उसे शुभ अग्निवर्ण वाली कहा गया है। कमल नेत्र का तात्पर्य है बड़ी आंखें। कमल सब पुष्पों में बड़ा एवं सबसे सौभाग्यमान माना गया है। नेत्र देखने का काम करते हैं। कमल नेत्र का अलंकार दूर दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि का संकेत करता है। सावित्री की उपासना साधक को यही विशेषताएं प्रदान करती हैं। वह इसकी संभावना को देखता है, दूर की बात सोचता है, सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। जो बातें छोटी आंख वालों को, ओछे लोगों को सूझ नहीं पड़ती, वे उस कमल नेत्र वाली सावित्री के भक्तों को सूझती हैं और वे उपलब्ध दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ही नहीं अन्य असंख्यों का भी कल्याण करते हैं। सावित्री की महिमा वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने उसे 3 पाद वाली, 6 कुक्षी वाली, 5 मस्तक वाली, शुभ वर्ण एवं कमल नेत्र वाली बताया है। वस्तुतः यह सभी विशेषण उस महाशक्ति में विद्यमान हैं, जो ठीक तरह अविच्छिन्न श्रद्धा और निर्धारित विधि विधान के साथ उसकी उपासना में संलग्न होता है। उसे किसी भी क्षेत्र में असफल एवं अभावग्रस्त नहीं रहना पड़ता। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अविच्छिन्न रूप से सुसंबद्ध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिवान का समन्वय तो होना चाहिए, इसीलिए गायत्री को, सावित्री को सूर्य प्रकाश के साथ सदा ही सम्मिलित किया जाता है। गायत्री स्मृधिमान हृदि व सूर्यमंडले कल्पोक्त लक्षण ध्यात्वाभ्यर्चतयोजयेत। बुद्धिमान पुरुष को हृदय में और सूर्यमंडल में गायत्री का स्मरण करना चाहिए और कल्पोक्त लक्षण से ही ध्यान तथा अभ्यर्चन करके उसके पश्चात जप करना चाहिए। आत्मा में अनंत दिव्य तेज भरा पड़ा है, वह गायत्री का ही भर्ग है। वह तेजस्विता से ही है, जठराग्नि बनकर शरीर का भोजन पचाती, उष्णता प्रदान करती और गतिशील सक्रियता प्रदान करती है। वही मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनकर विद्यमान रहती है। इसी प्रकाश से आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। आंखों की पुतलियों में जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश बिंदु हमें संसार का सुंदर दृश्य देख सकने का अवसर देता है, वैसे ही आत्मा में स्थित वह परम तेज हमें तत्वदर्शी बनाता है, अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाशयुक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन में आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योति पुंज के रूप में ही होता है। आकृतियों वाले इष्ट देव तो हमारे कल्पना चित्र मात्र हैं, जो ध्यान धारणा में परिपक्वता लाने तक ही काम आते हैं। उससे ऊंची स्थिति में तो ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अवलंबन रह जाती है। यही आध्यात्मिक यज्ञाग्नि है। इसी को आदित्य दिव्य आभा, अखंड ज्योति कहते हैं। यह आभा जिसे जितनी मात्रा में मिलती जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ, सविता देवता के साथ एकाकार होता चला जाता है। संसार के समस्त जड़ चेतन में यही ज्योति प्रकाशमान है। इसी से देव शक्तियां और पंच तत्व अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। ग्रह नक्षत्रों में यह प्रकाश जगमगा रहा है। हमारा कल्याण इस प्रकाश में उत्प्रोत होने से ही होता है। वेदों में जिस अग्नि का सहस्रों मंत्रों में वर्णन एवं स्तवन किया गया है, वह चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, वरन व्यष्टि और समिष्टि को हर दिशा में प्रकाशित, प्रभावित करने वाली दिव्य तेजस्विनी दिव्य ज्योति है। यही यज्ञाग्नि है। इसी का वैश्वानर रूप में आदित्य और सविता रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। अग्नि और सूर्य में भी वही दिव्य तेजस्विता विद्यमान है, इसलिए उसे उनमें उपस्थित होते हुए भी भिन्न माना गया है। श्रुति कहती है, योग्नो तिष्ठन्नग्निर्तरो यमग्निर्वेद्यस्ताग्नि शरीर योग्निमंतरो यमयत्येष्टा आत्मांतर्याभिमृतः। जो अग्नि में रहकर अग्नि से भिन्न है, जिसको नहीं जानते, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के भीतर रहकर अग्नि को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारा अंतर्यामी है। सावित्री का देवता सविता वह नहीं है जो सवेरे उगता और सायं को अस्त होता है, यह उसकी एक प्रतिमा मात्र है। सूर्य आवरण है और सविता उसकी आत्मा है। जो सर्वत्र प्रकाश, जीव जागृति, चेतना उत्पन्न करता है, वह सविता है। यूं दृश्य सूर्य में भी गुण है, पर आत्मा में इन विशेषताओं का प्रेरक एवं संस्थापक सविता परब्रह्म परमात्मा ही है। सावित्री उसी की अविच्छिन्न शक्ति है। इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक का कार्य दूसरे पर पूर्णतया निर्भर है। एक देवता है, दूसरा देवी। एक प्राण दो शरीर की तरह दोनों को अविभाज्य ही समझना चाहिए। सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता परब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। माता के द्वारा ही पिता से संबंध और परिचय होता है। माता का माध्यम न हो तो पिता का परिचय, संबंध एवं अनुग्रह प्राप्त हो सकना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का सहारा लिए बिना परब्रह्म के सृष्टि साम्राज्य में आत्मा को खेलने, युवराज बनने और अनंत ऐश्वर्य पर अधिकार करने का भी सौभाग्य नहीं मिल सकता। उपनिषद में इस तथ्य को और भी विस्तार पूर्वक विवेचना एवं उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उल्लेख इस प्रकार मिलता है। कस्विता का सावित्री, अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री, कस्विता का सावित्री वरुणेव, कस्विता का सावित्री वायुरेव, कस्विता का सावित्री यज्ञ एव सविता छंदासी सावित्री, कस्विता का सावित्री स्तनयित्नुरेव सविता विद्युत सावित्री, कस्विता का सावित्री आदित्य एव सविता द्योत सावित्री, कस्विता का सावित्री चंद्र एव सविता नक्षत्राणी सावित्री, कस्विता का सावित्री पुरुष एव सविता स्त्री सावित्री एवं ज्ञात्वा विद्वान कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एवं सलोक्ता जुषतीत्युपनिषद। सविता और सावित्री कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री है, वरुण सविता है और जल सावित्री है, वायु सविता है और आकाश सावित्री है, यज्ञ सविता है और ऋचा सावित्री है, मेघ सविता है और विद्युत सावित्री है, सूर्य सविता आकाश सावित्री है, चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है, मन सविता है और वाणी सावित्री है, पुरुष सविता है और स्त्री सावित्री है। इस सर्वव्यापक तेजो में सावित्री को जो विद्वान जानते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। सावित्री से ही सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर के रूप में सविता सावित्री का रूप उपरोक्त मंत्र में पूछा है और उसी में उदाहरण सहित समाधान भी किया गया। सविता और सावित्री के जोड़े को उदाहरण सहित अन्य युग्मों के सदृश बताकर जिज्ञासु की शंका का समाधान किया गया है। जल दृश्य पदार्थ है, वरुण उसकी अधिष्ठात्री शक्ति आत्मा है, वायु का निवास आकाश में है। आकाश न हो तो वायु कहाँ रह सकेगी, वायु न हो तो आकाश का उपयोग क्या रहेगा। इसी प्रकार आदित्य की निर्भरता द्योलोक पर है। मंत्र बड़ा है, उसमें कितने ही युग्मों का उदाहरण देकर जिज्ञासु को यही तथ्य हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन का साध्य लक्ष्य ब्रह्म है और उसका साधन गायत्री। यदि किसी को ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त करना हो, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म परायणता, ब्रह्म निर्वाण एवं ब्रह्मत्व उपलब्ध करने की आकांक्षा करता हो तो उसे ब्रह्म तेज की, ब्रह्म वर्चस्व की, अधिष्ठात्री देवी सावित्री गायत्री का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। ज्योति अवतरण की साधना। ब्रह्मवर्चस्व को, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अनेकों साधनाएं हैं। उनके विधि विधान और महात्म्य अलग हैं। इस छो पुस्तक में उन सबका उल्लेख किया भी नहीं जा सकता, पर सविता की, सावित्री की, गायत्री की प्राण शक्ति का कर्षण करने और अपने में उसका विकास करने के लिए ज्योति अवतरण की तेजपुंज साधना भी उच्च स्तरीय और ध्यान धारणाओं में से एक है। एक प्रकार से यह अपने आप में पूर्ण भी है और गायत्री साधना की सिद्धि के लिए इसका अवलंबन लिया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर की साधना वह कहलाती है जिसमें माँ की छवि के साथ साथ पूजा उपकरणों की आवश्यकता होती है। भावनाओं के विकास और अपनी श्रद्धा निष्ठा को प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से उसका अपना विशिष्ट महत्व है, किंतु साधना की सिद्धि के लिए उच्च स्तरीय ध्यान धारणा ही काम में आती है। इष्ट के चित्र और प्रतिमा के साथ की गई उपासना से पूर्वाभास, सुखद स्वप्नों से भविष्य ज्ञान, माता के दर्शन, अंतःकरण से दिव्य भावनाओं की स्फुरणा इस साधना की सफलता के संकेत होते हैं, किंतु आत्म साक्षात्कार की भूमिका वह होती है जिसमें सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य की अनुभूति होती है। यह स्थिति भगवती गायत्री के तेज पुंज में अपने आप को घुलाने, मेल मिलाप कराने के अभ्यास से प्रारंभ होती है और उस तेज पुंज में समाधिस्थ हो जाने की प्रगाढ़ अवस्था में उसकी परिणति। उस स्तर का साधक अपने आप को सविता के तेजपुंज की स्थिति में अनुभव करता और विराट आत्मा की अनुभूति करता है। इस दृष्टि से तेजपुंज ज्योति अवतरण की साधना का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। इसके लिए चित्र आदि की आवश्यकता नहीं। रात्रि को यदि कभी आंख खुल जाए तो बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। बैठकर करनी हो तो दीवार, मसंद का सहारा लिया जा सकता है। आराम कुर्सी भी काम में लाई जा सकती है। शरीर को शिथिल, मन को एकाग्र करके सुविधा के समय इस साधना को करना चाहिए। समय कितना लगाना है यह अपनी सुविधा एवं परिस्थिति पर निर्भर है, पर जितना भी समय लगाना हो उसे तीन भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। एक तिहाई में स्थूल शरीर, एक तिहाई में सूक्ष्म शरीर और एक तिहाई में कारण शरीर में ज्योति का अवतरण करना चाहिए। अनुमान से या घड़ी की सहायता से यह समय निर्धारित करना चाहिए। सूक्ष्म जगत में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की प्रेरणापूर्ण किरणें निरंतर बहती रहती हैं। उन्हें श्रद्धा, एकाग्रता और भावनापूर्वक ध्यान करके इस लेख में वर्णित विधि से कोई भी साधक ग्रहण कर सकता है, पर अपने परिवार के लिए, इस साधना में संलग्न साधकों के लिए दो दो घंटे के दो ऐसे समय भी नियत हैं जिनमें किन्हीं महान दिव्य शक्तियों द्वारा अपना शक्ति प्रवाह भी जोड़ दिया जाता है और उस समय ध्यान करने में विशेष आनंद आता है और विशेष प्रभाव पड़ता है। यह समय रात्रि को 8 बजे और प्रातः 3 से 5 बजे का है। इन दोनों अवसरों में से जब सुविधा हो तब वह अपनी सुविधा के अनुरूप समय निर्धारित कर सकते हैं। आरंभ में यह समय एक बार में आधा घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 1 घंटे तक का किया जा सकता है। रात्रि के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दोनों बार भी यह साधना की जा सकती है। तब 2 बार में कुल मिलाकर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का यह समय हो सकता है। 24 घंटे में 2 घंटे इसके लिए अधिकतम समय हो सकता है। अधिक तेज के ग्रहण करने में कठिनाई पड़ती है, इसलिए ग्रहण उतना ही करना चाहिए जितना पचाया जा सके। कौन किस समय इस साधना को करे, कितनी देर, किस प्रकार बैठकर करे, यह निर्धारण करना साधक का काम है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी चाहिए, पर जो क्रम या समय निर्धारित किया जाए उसे उसी क्रम से चलाना चाहिए। समय और स्थिति का एक ही क्रम चलाना किसी भी साधना की सफलता के लिए उचित एवं आवश्यक है। ज्योति अवतरण साधना इस प्रकार करनी चाहिए। 1. शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए। भावना करनी चाहिए कि अपना मन, शरीर और आत्मा पूर्ण शांत, निश्चिंत एवं प्रसन्न स्थिति में अवस्थित है। यह भावना 5 मिनट करने से चित्त में ध्यान के उपयुक्त शांति उत्पन्न होने लगती है। 2. ध्यान कीजिए, चारों ओर प्रकाश पुंज फैला हुआ है। आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है। भगवती आदिशक्ति और आभा सूर्य मंडल से निकलकर सीधी आप तक चली आ रही है और आप उस प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। 3. यह प्रकाश किरणें धीरे धीरे आपके शरीर में, त्वचा छिद्रों में प्रवेश करती हुई प्रत्येक अवयव में घुस रही हैं। हृदय, फेफड़े, आमाशय, मस्तिष्क, हाथ, पैर और अंग उस प्रकाश पुंज को अपने भीतर धारण करके परिपुष्ट हो रहे हैं। जिह्वा, गुहेन्द्रिय, नेत्र, कान, नाक आदि इंद्रिय इस प्रकार से आलोकित होकर पवित्र बन रही हैं, उनकी असंयम वृत्ति जल रही है। पवित्रता की यह ज्योति शरीर के कण कण को पवित्र बनाने में संलग्न है। स्थूल शरीर में रक्त, मांस, अस्थि आदि के बने हुए अवयवों के प्रकाश पुंज बनने और उनके परिपुष्ट, पवित्र, स्फूर्तिवान एवं ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करने के उपरांत सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर का स्थान मस्तिष्क है। 4. ध्यान करना चाहिए कि मस्तिष्क के भीतर मक्खन जैसे बिखरे हुए कणों में अगणित प्रकार की मानसिक शक्तियों एवं विचारणाओं के केंद्र छिपे हुए हैं। उन तक आदिशक्ति माता के प्रकाश की धाराएं बह रही हैं और वे सभी कण उसके द्वारा रत्न कणों की तरह ज्योतिर्मय होकर जगमगाने लगे हैं। 5. मन में छिपे हुए अज्ञानांधकार का असंयम, स्वार्थ, मोह, भय और भ्रम जंजाल का इस प्रकाश के प्रवेश होने से विनाश हो चला और मानसिक संस्थान का कण कण विवेक, उच्च विचार, संतुलन एवं सुरुचि जैसी विभूतियों से जगमगाने लगा। गायत्री माता की इस ज्योति द्वारा अपनी मनोभूमि को महापुरुषों जैसे स्तर की बनाया जा रहा है और हम उस प्रकाश को बड़ी श्रद्धापूर्वक अधिकाधिक मात्रा में मस्तिष्कीय कणों में ग्रहण एवं धारण करते चले जा रहे हैं। 6. ध्यान करना चाहिए कि आकाश में अनंत प्रकाश की आभा अवतरित होकर अपने हृदय में अवस्थित आत्मा के अंगुष्ठ मात्र प्रकाश पुंज में प्रवेश कर रही है। उसकी सोमबद्धता, संकीर्णता और तुच्छता दूर कर अपने सदृश बना रही हैं। लघु और महान का यह मिलन अणु ज्योति का यह आलिंगन परस्पर महान आदान प्रदान के रूप में परिणत हो रहा है। 7. जीवात्मा का लघु प्रकाश परमात्मा के परम प्रकाश से लिप्त रहा है और दीपक पर जलने वाले पतंगे की तरह, यज्ञकिंड में पड़ने वाली आहुति की तरह अपने अस्तित्व को होम रहा है। चकोर की तरह उस प्रकाश पुंज को चंद्रमा मानकर आह्लादित हो रहा है और अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है। 8. इस मिलन के फलस्वरूप अंतःकरण में सद्भावनाओं की हिलोरें उठ रही हैं, आकांक्षाएं आदर्श एवं उत्कृष्टता से परिपूर्ण हो चली हैं। ईश्वरीय संदेशों और आदर्शों पर चलने की निष्ठा परिपक्व हो रही है। विश्व के कण कण में परमब्रह्म को ओतप्रोत देखकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल हो रही है और सेवा धर्म अपनाकर ईश्वर भक्ति के मधुर रसास्वादन की उमंग उठ रही है। आत्मा की महिमा के अनुरूप अपनी विचारणा और कार्य पद्धति रखने का निश्चय प्रबल हो रहा है। 9. अनंत प्रकाश के आनंदमय समुद्र में स्नान करते हुए आत्मा अपने आप को धन्य एवं कृतकृत्य हुआ अनुभव कर रहा है। इस संसार में जीवन को सफल बनाने की सबसे बड़ी शक्ति अध्यात्म ही है। उसी के द्वारा मनुष्य अपने को पहचान सकता है और समस्त प्राणियों को एक ही महाशक्ति का अंग समझकर उसके साथ अपनत्व का अनुभव कर सकता है। इस तरह की भावना हमारी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा सकती है। ज्योति अवतरण की साधना से मनुष्य इस सर्वव्यापी आत्मतत्व की वास्तविकता को बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। यह अनुभूति जितनी प्रगाढ़ होगी, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार और अपनी आत्मा में होने की भावना उतनी ही सघन होती चली जाएगी।